कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, इन दिनों हम बाइबल की 12वीं पुस्तक दूसरा राजा का बाइबल अध्ययन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आपको इससे आत्मिक लाभ मिल रहा होगा। परमेश्वर की आशीषों को इन अध्ययनों से पाते जाइए और लगातार प्रार्थना में रहकर सुनते रहिए सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके हमारे उन नए श्रोता मित्रों का जो आज हमारे इस कार्यक्रम में पहली बार भाग ले रहे हैं। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों दूसरे राजाओं की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की एक पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि येहू ने आहाब के पुत्र योराम का और यहूदा के राजा अजय्याह का वध किया और इजेबेल को अटारी से गिरवाकर मार दिया। उसके बाद आहाब के 70 बेटे पुत्रों को समाप्त किया और राजा बना। येहू के बाद इसराइल में उसका पुत्र यहोआहाज राजा हुआ। उसके बाद उसका पुत्र यहोआस इसराइल के सिंहासन पर बैठा। इस बीच एलिशा भी रोगी होकर मर गया, परंतु मरने से पूर्व उसने यहोवा का वचन यहोआस को उसके विश्वास के अनुपात में सुनाया कि वह केवल 3 बार ही आराम पर विजयी होगा। उधर आराम में हजाएल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बेनहदत राजा हुआ और 3 बार इसराइल से हारा। इस प्रकार यहोआस ने इसराइल की सीमाएं उससे पुनः ले ली। इसी बीच यहूदा का इतिहास इस प्रकार है कि अजय्याह की मृत्यु का संदेश सुनकर राजमाता अतल्याह को भय था कि उसके पोते यदि उसके अधीन न रहे तो उसकी राज करने की इच्छा पूरी न होगी। अतः उसने अपने सब पोतों को मरवा दिया। परंतु अहज्याह की बहन यहोशेबा ने अपने एक भतीजे एवास को कोठरी में छिपाकर बचा लिया और याजक यहोयादा ने सहयोग दिया और वह यहूदा का राजा बना, परंतु वह अभी 7 वर्ष का ही था। यहोयादा ने उसका अभिषेक किया और प्रजा का पक्ष प्राप्त करके अतल्याह को भी मरवा डाला और इसराइल को अंधकार से निकाला। योआस ने यहूदा पर 40 वर्ष तक राज्य किया। योआस के युग में नव जागृति आई, परंतु ऊंचे स्थान गिराए न गए थे, अर्थात प्रजा वहां तब भी बलि चढ़ाती और धूप जलाती थी। उसने एक अच्छा काम यह किया कि मंदिर की वित्त व्यवस्था सुधारी और मंदिर के रख रखाव पर ध्यान दिया। योआस के बाद उसका पुत्र अमस्याह राजा हुआ और वह भी एक अच्छा राजा था, परंतु उसने भी ऊंचे स्थान नहीं गिराए। 29 वर्ष तक वह राज्य करके मर गया और उसका पुत्र अजर्याह उज्जियाह यहूदा का राजा हुआ। मित्रों, जब अमस्याह यहूदा में राज कर रहा था तब 15 वर्ष में इसराइल पर यहोआस का पुत्र यारोबाम द्वितीय राज्य करने लगा। यारोबाम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जकर्याह सिंहासन पर बैठा। यह यहूदा के राजा उज्जियाह के राज्य का 48वां वर्ष था। परमेश्वर ने यहू से कहा था कि उसके पर पोते के पुत्र तक उसका वंश इसराइल पर राज्य करेगा और वैसा ही हुआ। जकर्याह यहू के पर पोते का पुत्र था। मेरे मित्रों, जकर्याह के बाद शलूम ने सिंहासन पकड़ा और 1 महीने बाद ही मनहेम ने उसे घात करके सिंहासन संभाल लिया। वह भी बुरा राजा था और यारोबाम के बछड़े की पूजा करता था। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र पकायाह इसराइल का राजा हुआ। यह यहूदा के राजा अजर्याह के राज्यकाल का 50वां वर्ष था। उसने भी यारोबाम की इसी चाल चली, पकायाह को घात करके पेका इसराइल का राजा बना। अजर्याह के 92 वर्ष में वह भी यारोबाम के मार्ग पर चला। इसी बीच अशूर के राजा तिग्लत-पिलेसेर ने आक्रमण किया और इसराइलियों को बंदी बनाकर ले गया। होशे ने षड्यंत्र रचकर पेका को भी घात किया और खुद राजा बना। मित्रों, यहूदा में उज्जियाह की मृत्यु के पश्चात योताम राजा हुआ और इस समय इसराइल में पेका 2 वर्ष तक राज्य कर चुका था। मित्रों, यहाँ तक हम अध्ययन कर चुके थे और आज हम देखेंगे अध्याय 16 से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इतिहास में रुचि है तो यह अध्याय आपके लिए है, और यदि आप आत्मिक शिक्षा की खोज में हैं तो भी आपको इस अध्याय में कुछ अत्यधिक व्यवहारिक बातें देखने को मिलेंगी। परमेश्वर के इस वचन का अधिकांश भाग हमारे लिए सहायक है। स्मरण रखें कि ये सब घटनाएं हमारे लिए एक उदाहरण है। तो आइए देखें यहूदा का राजा आहाज। दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 2 और 3 पद में लिखा हुआ है, जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटे को भी आग में होम कर दिया। मेरे मित्रों, इसराइल में राजा पेकह के राज के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज सिंहासन पर बैठा। वह अच्छे राजाओं में गिना नहीं जाता है। पेकह ने इसराइल में 20 वर्ष राज्य किया। हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 4 पद में, और ऊंचे स्थानों और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। ध्यान दें, वह इसराइल के राजा के दुष्टता के मार्गों पर चला। उसने मूर्तियों को बच्चों की बलि चढ़ाई, संभवतः मार्दोक को या बाल को। यह आत्मिक पतन का निम्नतम स्तर था। आहाज ने ऐसा ही किया। मित्रों, लिखा है कि वह ऊंचे स्थानों पर, पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे बलि चढ़ाता था और धूप जलाता था। दूसरे शब्दों में आहाज पूरी तरह मूर्ति पूजा, अन्य जातियों की तरह पूजा पाठ किया करता था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं, जब अराम के राजा रसीन और रमल्याह के पुत्र इसराइल के राजा पेकह ने लड़ने के लिए यरूशलेम पर चढ़ाई की और उन्होंने आहाज को घेर लिया, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन ना पड़ा। मित्रों, यशाया की पुस्तक अध्याय 7 में दी गई भविष्यवाणी सविस्तार इसकी चर्चा करती है। यह अध्याय अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रभु यीशु के कुंवारी से जन्म लेने की भविष्यवाणी है। यशाया की पुस्तक में हम पाते हैं यशाया आहाज को भविष्यवाणी का वचन सुना रहा था क्योंकि वह परमेश्वर की वाणी सुनने को तैयार नहीं था। यशाया उसे परमेश्वर का भरोसा करने की चुनौती देता है। आहाज ने अशूरों से सहायता मांगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि अशूरों को खुला द्वार मिला और वे आए और उत्तरी राज्य को बंधुआई में ले गए। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, उस समय अराम के राजा रसी ने एलत को अराम के वश में करके यहूदियों को वहां से निकाल दिया। तब अरामी लोग एलत को गए और आज के दिन तक वहां रहते हैं। मेरे मित्रों, लिखा है कि आज के दिन तक, अर्थात जब यह इतिहास लिखा जा रहा था उस दिन तक। यहाँ पहली बार यहूदी शब्द आया है। कुछ विचारकों का कहना है कि यहूदी शब्द से तात्पर्य है केवल यहूदा राज्य की प्रजा, परंतु यहाँ आप देखते हैं कि यहूदी शब्द उत्तरी राज्य की प्रजा के लिए काम में लिया गया है, अरामी सीमा तक के निवासियों के लिए। हम देखेंगे कि 12 गोत्रों के सदस्य यहूदी कहलाते थे। आइए हम पढ़ें दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, और आहाज ने दूत भेजकर अशूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर के पास कहला भेजा कि मुझे अपना दास वरन बेटा जानकर चढ़ाई कर और मुझे अराम के राजा और इसराइल के राजा के हाथ से बचा जो मेरे विरुद्ध उठे हैं। और आहाज ने यहोवा के भवन में और राजभवन के भंडारों में जितना सोना चांदी मिला उसे अशूर के राजा के पास भेंट करके भेज दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि अशूर आहाज से रिश्वत पाकर उसकी सहायता करने के लिए आए। उन्होंने अराम पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय के 10 पद में, तब राजा आहाज अशूर के राजा तिग्लत्पिलेसेर से भेंट करने के लिए दमिश्क को गया और वहां की वेदी देखकर उसकी सब बनावट के अनुसार उसका नक्शा उरियाह याजक के पास नमूना करके भेज दिया। मित्रों, आहाज उस अरामी मंदिर की वेदी की नकल यहूदा के मंदिर में बनवाना चाहता था, यहोवा के मंदिर में। इसराइल इसके विरोध और राजा के कामों के विरोध भविष्यवाणी का वचन सुनाता रहा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, फिर राजा आहाज ने कुर्सियों की पटरियों को काट डाला और हौदियों को उन पर से उतार दिया और बड़े हौद को उन पीतल के बैलों पर से जो उसके तले थे उतार कर पत्थरों के फर्श पर धर दिया। मेरे मित्रों, आहाज जीवित और सच्चे परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध अपनी अभक्ति प्रकट कर रहा था। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 16 अध्याय उसके 18 से 20 पद में पढ़ते हैं, और विश्राम के दिन के लिए जो छाया हुआ स्थान भवन में बना था और राजा के बाहर के प्रवेश करने का फाटक, उनको उसने अश्शूर के राजा के कारण यहोवा के भवन से अलग कर दिया। आहाज के और काम जो उसने किए, वे क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? निदान आहाज अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। मेरे मित्रों, आहाज ने परमेश्वर के भवन को विकृत किया और संभवतः उसको साज सज्जा से वंचित किया। उसकी मृत्यु और उसके पुत्र के हिजकिय्याह के राज्याभिषेक के साथ यह अध्याय का समापन होता है। यह एक बड़ी असामान्य बात है कि आहाज जैसे अभक्त राजा का पुत्र हिजकिय्याह था। अगले अध्ययन में हम उसका वर्णन को देखेंगे। मित्रों, अब हम अध्याय 17 में आते हैं और इसमें हम देखेंगे इसराइल का पतन और दासत्व में जाना। इसराइल के दासत्व में जाने के कारण है जिसे हम देखेंगे। पहला है परमेश्वर की अवज्ञा, इसे हम पद 13 में पढ़ते हैं, तो भी यहोवा ने सब भविष्यद वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इसराइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था, अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यद वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। तब दूसरा कारण है परमेश्वर पर विश्वास न किया। पद 14 और इतिहास के दूसरे इतिहास की पुस्तक 35 अध्याय उसके 15 और 16 पद में, परंतु उन्होंने माना वरन अपने पुरखाओं के समान जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले बन गए। तब हम तीसरा कारण देखते हैं परमेश्वर की आज्ञाओं का त्याग, इसे हम पद 15 में पाते हैं। 490 वर्षों तक सप्त का पालन न करना, यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। मित्रों, इस राष्ट्र की कहानी प्रत्येक मनुष्य की कहानी है। हम देखते हैं होशे का राज्य। अध्याय 17 में इसराइल के इतिहास का अंत होता है और उत्तरी राष्ट्र के 10 गोत्र अश्शूरों द्वारा दास बनाकर विस्थापित किए जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 और 2 पद। 17 अध्याय 1 और 2 पद, यहूदा के राजा आहाज के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे शोमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इसराइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे। मेरे मित्रों, वह इतना बुरा भी नहीं था जितना आहाब और इजेबेल थे, और न ही अहज्याह के तुल्य था, परंतु यह भी बुरा ही था। हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 17 अध्याय उसके 3 से 5 पद में आगे पढ़ते हैं, उस पर अश्शूर के राजा सलमनेसेर ने चढ़ाई की और होशे उसके अधीन होकर उसको भेंट देने लगा, परंतु अश्शूर के राजा ने होशे को राजद्रोह की गोष्ठी करने वाला जान लिया, क्योंकि उसने सो नाम मिस्र के राजा के पास दूत भेजे और अश्शूर के राजा के पास सालियाना भेंट भेजनी छोड़ दी। इस कारण अश्शूर के राजा ने उसको बंद किया और बेड़ी डालकर बंदी गृह में डाल दिया। तब अश्शूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की और शोमरोन को जाकर 3 वर्ष तक उसे घेरे रहा। मेरे मित्रों, यहाँ हमारा परिचय अश्शूरों के राजा सलमनेसेर से होता है। उसने उत्तरी राज्य को अपने अधीन किया और होशे से कर लेने लगा। होशे ने जब मिस्र से मिलकर उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा तो उसने सामरिया को घेर लिया। सामरिया नगर का निर्माण अहाब के पिता ओमनी ने किया था। अहाब ने वहां महल बनवाया था और यह स्थान देश का सबसे सुंदर स्थान था। अब अशूरों के राजा ने उसे घेर लिया। हम आगे देखते हैं इसराइल का बंदी बनाया जाना। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17:6 में लिखा है, होशे के 9वें वर्ष में अशूर के राजा ने शोमरोन को ले लिया और इसराइल को अशूर में ले जाकर हलह में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मादियों के नगरों में बसाया। मेरे मित्रों, ऐसे भी विचारक हैं जिनके अनुसार ये 10 गोत्र विलोप हो गए और बर्तानिया में प्रकट हुए और वहां से अमेरिका पहुंचे। यह उनके लिए एक अच्छी कहानी है जो इस बात पर घमंड करते हैं कि वे इन खोए हुए गोत्रों के वंशज हैं। परंतु यह विचार कि इसराइल के 10 गोत्र विलोप हो गए हैं मनुष्य की कपोल कल्पित कथा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ नहीं कहता। उदाहरण के लिए नए नियम में याकूब की पत्री को देखें जो 1:1 में कहता है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। अर्थात याकूब के विचार में 10 गोत्र विलोप नहीं हुए थे। वे जो कहते हैं कि ये 10 गोत्र विलोप हो गए, उनका कहना है कि अशूरों के दासत्व में विस्थापित होकर विलोप हो गए। जब यहूदी बाबुल से लौटे थे तब आप देखेंगे कि उनमें सब गोत्रों के वंशज थे। और यह सच है कि बंधुआई में जाने वाले लाखों यहूदी थे, परंतु स्वदेश लौटने वालों की संख्या मात्र 65,000 ही थी। मेरे मित्रों, हम देखते हैं इसराइल की बंधुआई के कारण। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17:7-8 में लिखा है, इसका यह कारण है कि यद्यपि इसराइलियों का परमेश्वर यहोवा उनको मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर मिस्र देश से निकाल लाया था, तो भी उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया और पराये देवताओं का भय माना और जिन जातियों को यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाला था उनकी रीति पर और अपने राजाओं की चलाई हुई रीतियों पर चलते थे। मेरे मित्रों, परमेश्वर उनके साथ धीरजवंत था। राज्य के विभाजन के बाद 200 वर्षों से भी अधिक समय तक परमेश्वर ने उन्हें बहुत अवसर दिए और समय भी दिया कि वे परमेश्वर के पास वापस आ जाएं। परंतु उन्होंने चिंता नहीं की, वे लगातार मूर्ति पूजा करते रहे और वचन स्पष्ट कहता है कि उन्होंने हट करके अन्य देवताओं की उपासना की और बलि चढ़ाए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें दासत्व में जाने दिया। हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 17:9-10 में पढ़ते हैं, और इसराइलियों ने कपट करके अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध अनुचित काम किए, अर्थात पहरुओं के गुम्मट से लेकर गढ़ वाले नगर तक अपनी सारी बस्तियों में ऊंचे स्थान बना लिए और सब ऊंची पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले लाठें और अशेरा खड़े कर दिए। मेरे प्रियो, पहाड़ियों पर और हरे वृक्षों के नीचे विजातीय उपासना होती थी और इसराइल उनके साथ अनैतिकता और व्यभिचार करता था। हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 17:11-12 में, और ऐसे ऊंचे स्थानों में उन जातियों की नाई जिनको यहोवा ने उनके सामने से निकाल दिया था धूप जलाया और यहोवा को क्रोध दिलाने के योग्य बुरे काम किए और मूर्तों की उपासना की जिसके विषय यहोवा ने उनसे कहा था कि तुम यह काम न करना। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने अन्य जातियों को वहां से इसलिए हटाया था कि वे उनका आचरण अनैतिकता और मूर्ति पूजा का काम न करें। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रजा को इन सब अनाचारों के उपरांत वहां रहने देगा? कदापि नहीं। उसने अशूरों को आने दिया कि वे उन्हें बंदी बना करके ले जाएं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 17:13 में पढ़ते हैं, तो भी यहोवा ने सब भविष्यद्वक्ताओं और सब दर्शियों के द्वारा इसराइल और यहूदा को यह कहकर चिताया था कि अपनी बुरी चाल छोड़कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दी थी और अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के हाथ तुम्हारे पास पहुंचाई है, मेरी आज्ञाओं और विधियों को माना करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उत्तरी राज्य इसराइल में अहिया, मिकाया, एलिया, एलिशा, योना, आमोस, होशे और दक्षिणी राज्य में अर्थात यहूदा में शिमाया, योएल, यशाया, मीका और बाद में नाहूम, हबकूक, सपन्या और इर्मिया को भेजा। प्रत्येक भविष्यद्वक्ता ने दोनों राष्ट्रों को चेतावनियां दी थी कि यदि वे अपनी दुष्टता का त्याग करके परमेश्वर के पास न लौटे तो इसका परिणाम बुरा होगा। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 14 पद में पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने न माना वरन अपने उन पुरखाओं की नाई जिन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वास न किया था, वे भी हठीले बन गए। उनका मुख्य पाप क्या था? वे अविश्वास के दोषी थे। मानव जाति का सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर पर विश्वास करने से इनकार। मित्रों, आप और मैं आज ऐसे युग में वास करते हैं जिसमें संस्कृति ने परमेश्वर को अस्तित्व से ही रहित कर दिया है। हमारी कलीसियाओं में से भी कई वर्ग उसे नहीं पुकारते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि परमेश्वर हमें भी वैसे ही दंड देगा जैसे उसने वर्षों पूर्व अपनी प्रजा को दंड दिया था। मित्रों, हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय के 15 पद में पढ़ते हैं, और वे उसकी विधियों और अपने पुरखाओं के साथ उसकी वाचा और जो चेतावनियां उसने उन्हें दी थी उनको तुच्छ जानकर निकम्मी बातों के पीछे हो लिए, जिससे वे आप निकम्मे हो गए और अपने चारों ओर की उन जातियों के पीछे भी हो लिए जिनके विषय यहोवा ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उनके से काम न करना। उत्तरी राज्य तो बंधुआई में चला गया, अब दक्षिणी राज्य का भी क्या होगा? आइए देखें दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 19 पद में, यहूदा ने भी अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं ना मानी वरन जो विधियां इसराइल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। ध्यान दीजिए, यहूदा ने इसराइल के इस दुखद अनुभव से शिक्षा नहीं ली। और अब हम आगे यही देखेंगे दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 20 और 21 पद में, तब यहोवा ने इसराइल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वालों के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। उसने इसराइल को तो दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया और उन्होंने नबात के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया और यारोबाम ने इसराइल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि यारोबाम ने इसराइल में बछड़े की पूजा आरंभ की थी। तब हम आगे पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 17 अध्याय उसके 22 और 23 पद में, सो जैसे पाप यारोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इसराइली भी करते रहे और उनसे अलग न हुए। अंत में यहोवा ने इसराइल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसने अपने सब दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इसराइल अपने देश से निकालकर अश्शूर को पहुंचाया गया, जहां वह आज के दिन तक रहता है। मेरे प्रियो, फिर से आज के दिन से अर्थ है दूसरे राजाओं की पुस्तक के लिखे जाने तक। मित्रों, हम आगे देखते हैं इसराइल में परदेशियों का अप्रवास। इसराइल को बंदी बनाने के बाद अश्शूरों का राजा उन्हें तो ले गया और उनके स्थान पर विदेशियों को बसा गया। उत्तरी राज्य के क्षेत्र को सामरिया कहते थे। नए नियम के समय सामरी कहलाने वाले वास्तव में वे विदेशी थे जिन्हें अश्शूर ने वहां पर बसाया था, जहां पर उन्होंने यहूदियों से मिश्रित विवाह किया और उनके संतान हुए जो अछूत भी कहलाए। यह उनका आरंभ था। हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 17 अध्याय उसके 26 से 29 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, इस कारण उन्होंने अश्शूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शोमरोन के नगरों में बसा दी है वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती। इससे उसने उसके मध्य सिंह भेजे हैं जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। तब अश्शूर के राजा ने आज्ञा दी कि जिन याचकों को तुम उस देश से ले आए उनमें से एक को वहां पहुंचा दो और वह वहां जाकर रहे और वह उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। तब जो याजक शोमरोन से निकाले गए थे उनमें से एक जाकर बेतेल में रहने लगा और उनको सिखाने लगा कि यहोवा का भय किस रीति से मानना चाहिए। तो भी एक एक जाति के लोगों ने अपने अपने निज देवता बनाकर अपने अपने बसाए हुए नगर में उन ऊंचे स्थानों के भवनों में रखा जो सोमरोनियों ने बसाए थे। मेरे प्रिय मित्रों, यह उत्तरी राज्य का अंत है। वह देश विभिन्न जातियों का मेलजोल वाला स्थान हो गया था। वहां अंतर जातीय विवाह होने लगे थे। ये 10 गोत्र अब कभी भी उत्तरी राज्य नहीं बना पाएंगे। वे अब भी तितर बितर हैं, परंतु विलोप नहीं हुए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने राजाओं के द्वारा से उन अन्य नई बातों को सीखा है जिसे परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है। हमने इस बात को जाना है कि इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और जिस कारण से उन्हें बंधुआई में जाना पड़ा। आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें ताकि हम उसके उन महान आशीषों को प्राप्त कर सकें जिसे परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से सहायता करें और आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तू सर